आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम बिंदिया है और मैं आपको अभी राजनीति विज्ञान जो थोड़ा समझ है उसको समझा रही हूँ। हम अभी कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 की चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का नाम था चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो पिछले बार में हमने सीखा कि चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, किस तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, जो सरकार चुनी जाती है उसमें चुनाव का क्या रोल होता है। फिर हमने भारत में जाना कि सर्वाधिक वोटों से जो जीत होती है उसी को जीत माना जाता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये सब कल हमने समझा था। अब हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम भारत की ही स्थिति को समझेंगे कि यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं, मतदाता कौन होता है, चुनाव का निर्णय कौन लेता है और ये प्रक्रिया कैसे भारत में संपन्न की जाती है, हम उसको समझेंगे। हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत से पहले आपको जो हमेशा आपको काम करना है, मतलब सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक खोल कर सामने रखनी है और उसमें पृष्ठ नंबर 60 पेज नंबर 60 आप लोगों को खोल लेना है। तो शुरुआत करते हैं, आप समझते हैं। देखिए, हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व दूसरे देशों में पढ़ा, पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत में कहीं कहीं ये प्रक्रिया कुछ जगह अपनाई भी जाती है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में। आपको राज्यसभा पता है, हमारी जो संसद है दो भागों में विभक्त है, लोकसभा जहां आम हम लोग वोट करते हैं और एक होती है राज्यसभा, वहां के जो सदस्य हैं उनको चुनने का एक अलग तरीका है, उसी में हम कहते हैं कि इनको हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुन रहे हैं। अब ये जो मेथड है इसको भारत में हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है उसे क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पर क्या होता है इस प्रणाली में कि जो प्रत्येक राज्य है, जो भी राज्य है हमारे देश 29 राज्य, उन सभी की सीटें निर्धारित हैं कि इस राज्य से 10 लोग चुनकर राज्यसभा जाएंगे, इस राज्य से 5 लोग चुनकर राज्यसभा जाएंगे, तो उनका कोटा हमेशा फिक्स होता है। अब ये जो राज्यसभा के लोग हैं, आपने हमने देखा होगा, हमने तो कभी वोट ही नहीं किया राज्यसभा के लिए, हम तो हमेशा लोकसभा के लिए वोट करते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा है और विधानसभा कहाँ होती है, विधानसभा राज्यों की होती है। तो ये जो राज्य होते हैं इनकी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें हम विधायक कहते हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसमें कौन मतदाता होता है राज्यसभा में, मतदाता, मतदाता होता है विधायक। तो मतदाता क्या करता है कि उनको एक प्रत्याशियों की लिस्ट दी जाती है, हर राज्य हर पार्टी अपने कुछ सदस्यों को चुनकर लिस्ट बनाती है और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम दे देता है। मतलब वो कहता है कि पहले मैं इसको चुनूंगा, उसके बाद मैं बी को चुनूंगा, फिर सी को चुनूंगा, ऐसे वो अपनी प्रायोरिटी बना देता है ना। राम, लक्ष्मण, शंकर, राजू, चार लोग हैं, तो कहेगा कि मैं पहले राजू को वोट करूंगा, फिर लक्ष्मण को वोट करूंगा, ऐसे वो अपने एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। अब जो जीत किसकी होगी, अब ये भी जानना है ना। तो यहाँ पर ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आती है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, इसको आपको रटना नहीं बस समझ लेना है। ये जो फॉर्मूला है इस आधार पर एक कोटा निकाला जाता है, मतलब कि एक व्यक्ति को अगर इतनी मत मिल गए, कोई भी वो डिपेंड करता है, फॉर्मूले पर डिपेंड करता है कि इसको, उदाहरण के लिए हम ले लें कि इसको 40 वोट मिल गए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक राज्यसभा में कैसे चुनेंगे, देखिए ये एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, कुल मतदान अपॉन कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1 ब्रैकेट के बाद प्लस 1, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा, उदाहरण, यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है, जैसे राजस्थान में कहा जो विधानसभा है वहां के सदस्य 200 है और राज्यसभा का, वहां से राजस्थान का कोटा है 4 सीटों का, 4 लोग चुनके जाएंगे। तो अब जो पहला उम्मीदवार है जो राज्यसभा जाएगा उसको कितने वोट चाहिए, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाया गया। आप देख रहे हैं कुल मतदान मतलब कुल विधायक कितने, 200। कुल विजयी उम्मीदवार मतलब कितने लोग राज्यसभा से चुनकर जाएंगे, 4+1, ये फॉर्मूले में लगता है और होल ब्रैकेट के बाद +1। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 41। यानी जिसको भी सबसे पहले 41 वोट मिल जाएंगे वो सबसे पहले चुनाव में जीत जाएगा। अब मतगणना हुई, अब तो सारे उम्मीदवारों को प्राप्त उनके प्रथम वरीयता वोट गिने जाते हैं। जैसे सारे उम्मीदवार हैं उसमें देखा जाता है कि किस किस को, जैसे राजू को काफी लोगों ने वोट किया कि हमें प्रथम वरीयता हमारी राजू है, हम राजू को भेजना चाहते हैं। तो जिसको भी देखेंगे कि जो सबसे पहले 41 वोट मिल गए, है ना, जिसको भी 41 वोट मिले वो व्यक्ति पहले राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएगा। पर हमें टोटल सदस्य तो 4 भेजने, तो अभी तो एक ही निर्वाचित हुआ है, तो एक को भेज दिया। अब फिर से इनकी पुनः मतगणना की जाती है, ठीक है, फिर से वोट गिने जाते हैं और ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों। मतलब आप सबके वोट गिने गए कि पहली चॉइस कौन कौन है, तो कुछ मतदाता देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ही कम वोट मिले, वो प्रथम वरीयता नहीं है, वो द्वितीय वरीयता है, तीसरी वरीयता है, तो इन लोगों को हटा दिया जाता है और इनके जो वोट हैं, जो बाकी सदस्य बचे हैं, जो बाकी प्रत्याशी है, उनमें बांट दिया जाता है। फिर से उनको ऐड किया जाता है उनके मतों को। फिर अब एक व्यक्ति तो चला गया राज्यसभा में, ठीक है, मान लीजिए कि 10 लोग प्रत्याशी थे तो 10 में से एक चला गया, अब 9 बचे थे, तो इस 9 में से जिसके सबसे कम वोट थे उसको बाहर निकालकर 8 जो लोग बचे उनमें वोटों को फिर बांट दिया गया। अब इनमें जिसको पहले 41 वोट मिलेंगे दूसरा नंबर उसका आएगा, वो जाएगा, फिर अगेन यही प्रोसेस होगी कि एक चला गया तो और आखिरी जो बचा वोट वाला उसे फिर निकाल दिया, तो कितने सदस्य बचे, 2 लोग चुन के चले गए 10 में से, है ना, तो बचे 8। 8 में से 2 कम वरीयता वाले फिर निकल गए तो बचे 6। ऐसे फिर इनकी वोटिंग होगी, ऐसे करके पहले जो 4 लोग हैं जिनको 41 वोट 1/1 मिलते जाएंगे वो निर्वाचित होकर राज्यसभा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मत हस्तांतरण होता है, मतलब एक के वोट दूसरे को दे दिए जाते हैं उसको जिताने के लिए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली कंफ्यूजिंग है ना। अब आपको समझ में आया कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी हमें समझने में ही, हमें बार बार जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तब आपको क्लियर होगा कि ये प्रोसेस कैसी होती है, या आप आगे और कक्षाओं में जाएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो था ही। और यही कारण है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया। अब हम सोच रहे थे ना कि हमने क्यों सर्वाधिक वोट अपनाए, ये दूसरी समानुपातिक क्यों नहीं अपनाया, तो ये अब आप आराम से समझ गए होंगे कि समानुपातिक बड़ा ही झंझट वाला मामला है ना, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ये, किसी छोटे देश के लिए ठीक है लेकिन हमारे जैसे विशाल देश के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है, क्योंकि जो सामान्य मतदाता है, आप जो आखिरी पैराग्राफ देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर भारत जैसे विशाल देश में नहीं। और ये उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है, है ना। ये जो समानुपातिक की जो मेथड है, अब आपने देखा मतलब बहुत ही ज्यादा जटिल थी, हमें ही समझने में इतना समय लग रहा है, तो एक सामान्य मतदाता जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, चुनाव का ज्ञान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन था। इसीलिए सार्वधिक वोट से जीतने वाली व्यवस्था को समझना सरल है, इसलिए उसे अपनाया गया। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं मतलब मतदाताओं को वोट करते समय किस प्रत्याशी या दल को स्वीकृति प्रदान करनी है उन्हें पता होता है, क्योंकि सार्वधिक वोट में हम प्रत्याशी को चुनाव वोट करते हैं, है ना। तो राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी चुन सकता है। वो उसकी मर्जी है कि वो किसी व्यक्ति को चुनना चाहता है, पार्टी को चुनना चाहता है, उस पर कोई दबाव नहीं है। और चाहे तो दोनों को चुन सकता है कि मुझे ये सदस्य भी, ये व्यक्ति भी पसंद है प्रत्याशी, और पार्टी भी पसंद है। तो यहाँ पे मतदान के समय संतुलन बना रहता है। और यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अब आपको जो समानुपातिक में आपको पता ही नहीं होता है कि आप किसको चुन के भेज रहे हैं, लेकिन सार्वधिक वोट की प्रणाली में आपको अपना उम्मीदवार पता होता है ना। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सबको पता था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता था, है ना। और बाकी जैसे है राहुल गांधी, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता था कि वो अमेठी से भी लड़ रहे हैं, केरल से भी लड़ रहे हैं। इस तरीके से हमको क्लैरिटी होती है, पर समानुपातिक में आपको पता ही नहीं है कि चुनाव कौन कहां से लड़ रहा है, क्योंकि आप पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी डिसाइड करती है वो किसको भेजना चाहती है। तो आप थोड़ा सा समझे, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप प्रत्याशी को वोट करते हैं तो जो प्रत्याशी है वो आपके प्रति उत्तरदायी भी हो जाता है, मतलब वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। तो उसको पता होता है कि भाई मुझे क्षेत्र का विकास करना है। तो ये जो सार्वधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन है, उत्तरदायी हम, अगर कुछ होता है तो हम अपने एमएलए एमपी के पास जा सकते हैं, हम बता सकते हैं भाई आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपका काम है हमारी रक्षा करना या हमें ये चीज प्रोवाइड कराना। तो ये एक बात है कि सार्वधिक वोट को हमने क्यों अपनाया। परंतु इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसी पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, आखिरी पैराग्राफ है 61 पर, कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जी हाँ, हम मैंने आपको पहले इसराइल का केस बताया था ना, वहां पर क्या हो रहा है, अभी भी चल रहा है वहां, कि किसी भी पार्टी को बहुमत ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब छोटे 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 पार्टी के लोग हैं, सब अपनी डिमांड करते हैं, हम आपसे मिलेंगे तो हम ये, हमें हमारी ये डिमांड है, हम ये चाहते हैं, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है। लेकिन जो सार्वधिक वोट की प्रणाली है यहाँ पर स्थायित्व मिल जाता है किसी एक, ज्यादातर यहाँ पे एक या दो ही पार्टी होती है ना, तो उनको दोनों में से किसी न किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो स्थायित्व रहता है, वो लोग निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था की, जो हमारी सार्वधिक वोट की व्यवस्था है, उसकी मांग है कि जो कार्यपालिका उसको बहुमत प्राप्त हो। तो समानुपातिक में क्या आता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन सार्वधिक वोट की जो प्रणाली है उसमें बड़े दलों या गठबंधनों को कुछ सीटें और मिल जाती हैं, ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है। जैसे आपने हमने 1984 का हमने वो देखा इलेक्शन कैसा हुआ है ना, तो उसको कांग्रेस पार्टी को 80% से ज्यादा सीट मिली। अभी आपने 2019 का भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन को 300-350 सीटें मिली। तो कितना स्थायित्व, मतलब सरकार कुछ भी निर्णय अच्छे से ले सकती है। तो ये कारण है कि ये जो प्रणाली है एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है, है ना। अगर सरकार स्थायी होगी तभी देश में शांति है, सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, सब कुछ सामान्य चलेगा। पर अगर वो लूली लंगड़ी सरकार है, कुछ लोग इसमें हैं, कुछ इसमें हैं, तो वो जो सरकार, हम कहते हैं कि भारत में कभी कभी होता है, एक दो बार हुआ है हमारे देश में, कहते हैं कि ये लंगड़ी सरकार बनी। लंगड़ी सरकार का अर्थ क्या होता है, यही कि वो कभी भी गिर सकती है, डावाडोल हो सकती है। तो भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहां विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं, उनको एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद भी करती है ये प्रणाली। जैसे भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। और ये बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में थी। देखिए समानुपातिक में क्या होता है कि सबको बराबर बराबर कुछ कुछ तो मिल ही रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एक धर्म की पार्टी बना लेंगे, एक जाति की पार्टी बना लेंगे। नहीं, हमें, हमारा देश विविधताओं से भरा है तो हमें ये कार्य नहीं करना है। एक कोई भी पार्टी हो उसमें सभी लोगों का समावेश हो, जब संसद बने तो सभी लोगों का समावेश हो। इसीलिए भी जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जो देश है यहाँ पे जो प्रणाली होगी वो कौन सी प्रणाली होगी, सर्वाधिक मतों की प्रणाली। ठीक है, अब आप पेज 62 पर ही आखिरी पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं कि संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है, संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की करणीय प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। तो अब हमें समझ में आया कि देखिए अब हम सोचते हैं संविधान बन गया, लेकिन अब आप एक एक चीज को देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे कितने दूरदर्शी थे कि देश में 50 साल बाद क्या हो सकता है, 60 साल बाद क्या हो सकता है, उन सब चीजों को सोचकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया और हर वर्ग को, हर धर्म को, हर समाज को रिप्रेजेंटेशन मिले उस पर भी उन्होंने काम किया। ठीक है, तो इसी को हम आगे पढ़ रहे हैं कि सार्वधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई। बिल्कुल, इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली ने, देखिए इसको भी सुनिए, इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जातु या समुदाय को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते थे। बिल्कुल, अदरवाइज क्या होता है कि अब कोई भी पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाता है, अदरवाइज समानुपातिक होती तो इस धर्म के वाले को हम अपने धर्म को वोट करेंगे, हम अपनी ही जाति को वोट करेंगे। अब ये वाला मामला खत्म हो गया। ठीक है, सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और ये दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है ना। आप बहुत ही हार्डली आप देखते होंगे, इन जनरल आप देखते हैं या तो भाजपा आ रही है या कांग्रेस आ रही है, हमारे देश में हम देखते हैं तीसरी पार्टी कहीं कहीं अब बनने लगी है। तो ऐसा होता है कि किसी छोटी पार्टी का वर्चस्व बहुत ही कम होता है जो किसी छोटे सी किसी जाति को या किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी भारत में उनको मान्यता उतनी प्राप्त नहीं है, पर हाँ 1979 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधन की प्रणाली को देखा जा सकता है। तो आपने देखा होगा अब गठबंधन की प्रणाली आ गई है, क्योंकि राज्य में तो ठीक है द्विदलीय ही रहती है, लेकिन गठबंधन सरकार के आने से नए और छोटे दलों को सार्वधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। कुछ जगह अभी आप देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार है ना, यूपीए जो कांग्रेस जहाँ पे बड़ी पार्टी होती है और बाकी उसके छोटे छोटे दल जो उसके विचारों से सहमत करते हैं, और एनडीए की सरकार जिसमें भाजपा बड़ी पार्टी है और छोटे छोटे दल उसके संग है। तो फिर भी दो वर्गों में ही हम लोग बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे समझेंगे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अब निर्वाचन क्षेत्र, हमने कहा ना कोई व्यक्ति किसी अपने निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार जीतता है, जो सबसे अधिक वोटों से जीता वही निर्वाचित घोषित होता है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो राज्य है या जो पूरा देश है उसको कुछ कुछ एरियाज में बांट दिया जाता है पॉपुलेशन वाइज कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक इन लोगों को वोट करेंगे, इस तरीके से इसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जो अधिक वोट पाया वो जीत गया। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि इससे कभी कभी छोटे छोटे सामूहिक समूहों का अहित हो जाता है और ये बात भारतीय समाज के परिवेश में बहुत महत्व है। देखिए हमारा जो देश है एक भेदभाव वहां यहाँ रहा है वो है जाति का। तो क्या होता है, ऐसा समझा जाता है कि जो सार्वधिक मत से जीत जाए प्रणाली, यहाँ पर परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां ही हर जगह जीत जाए। ये भी हो सकता है बस उन्हीं के लोग खड़े रहें। इसीलिए जो दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह है, जो दलित उत्पीड़ित लोग हैं, संविधान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको प्रतिनिधित्व मिले ही ना, क्योंकि पहले ही इतना भेदभाव था। तो उनसे हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्हें ऐसा लगा कि दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्हें ये लगा कि ये बहुत जरूरी है कि जो दलित समाज है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और आप पेज नंबर नेक्स्ट पेज पैराग्राफ 64 पर, जहां पर जो हमारा स्वतंत्रता है उसके जो समय है उससे पहले भी ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। एक निर्वाचन मंडल था, यहाँ पे क्या किया गया था कि किसी भी समुदाय का प्रतिनिधि है, मतलब सिख हो मुस्लिम हो, इन लोगों को भी प्रतिनिधि इनके चुने जाएंगे, लेकिन इनको वोट इनके ही धर्म के लोग करेंगे, है ना। मुस्लिम है तो मुस्लिम ही उनको वोट करेंगे, हर कोई इनको वोट नहीं कर सकता। सिख है तो सिख ही वोट करेंगे। परंतु ये बहुत गलत था, भारत ने इसका हमेशा विरोध किया। तो अभी सोचा गया कि देश में दलित उत्पीड़न को कैसे रोका जाए। तो भारत में विचार था कि ये व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था ठीक नहीं होगी कि इस धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों को वोट करें, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। कुछ निर्वाचन क्षेत्र है उन्हें आरक्षित कर दिया गया दलित समूहों के लिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जहां सीट आरक्षित है। ये थोड़ी व्यवस्था अलग थी। देखिए क्या किया गया, जैसे आप एक निर्वाचन क्षेत्र ले लीजिए, उदाहरण कोई भी ले लीजिए, आप एक ले लें कि एक छोटी सी जगह हम ले लेते हैं, मान लीजिए अंबिकापुर। अंबिकापुर एक जगह है, वहां से चुनाव होना है। अब इसको सरकार ने कहा ये आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र है, यहाँ पे आरक्षण है। आरक्षण किसका है? अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। अब आरक्षण है, इसका मतलब है कि वहां पे जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे किसी भी पार्टी से, 10 पार्टियों से प्रत्याशी खड़े, वो सारे जो प्रत्याशी होंगे वो अनुसूचित जाति के ही होंगे। ये बात समझिए, कांग्रेस भाजपा बसपा जो भी पार्टी है, जितनी भी पार्टी अपने लोग खड़े करेंगी, वो सारे जो लोग खड़े होंगे प्रत्याशी, वो एक ही जाति के होंगे, ठीक है। लेकिन वोट, जब वोटिंग होगी तो सारे मतदाता उनमें से ही किसी को चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि मतदाता कोई अलग होंगे। अंबिकापुर के जितने लोग हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो इन जो 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, जो भी सारे अनुसूचित जाति के हैं, उन्हीं को ही वोट करेंगे। तो इससे देखिए आरक्षित भी जो वर्ग है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिला, और जो समाज है उसमें कोई भेदभाव भी नहीं है, क्योंकि हम तो हमें एक किसी दलित व्यक्ति को यहाँ से चुनना है, तो जितने चुनना है वो सभी दलित है। पर जो मतदाता है वो ऐसा नहीं चुनेंगे कि हम इनको नहीं चुनना चाहते, उन सबको उन्हीं में से किसी को चुनना होगा। तो ये बड़ी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। परंतु जो ऐसे सामाजिक समूह है जिनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, वो देश में बहुत फैले हुए, तो कभी कहीं उनकी किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो गई थी। तो आप देखेंगे कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, वहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। और शुरू में व्यवस्था 10 वर्ष की थी, लेकिन क्योंकि अभी भी उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो 2020 तक तो आरक्षण उनका जारी रहेगा, ठीक है। और जब अगर आरक्षण की अवधि खत्म होने पर होगी तो संसद इसको और आगे बढ़ा सकती है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। तो इन दोनों समूह की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है, ठीक है। भारत में इनकी जितनी जनसंख्या है, जैसे लोकसभा में इनकी 84 अनुसूचित जाति की और 47 अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं, ये अभी है फिलहाल। तो ये आप समझ गए कि आरक्षण भी जरूरी है। अब आप अगले पृष्ठ पे आएंगे 65 पर। आप निर्वाचित तो कर दिया, आरक्षित तो कर दिया, लेकिन कौन कौन से क्षेत्रों को निर्वाचित किया गया है, कौन से क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, अब ये समझना भी जरूरी है। तो इसको जो इसका निर्णय है वो एक आयोग करता है, उसको कहते हैं परिसीमन आयोग। कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा, कहां से जो सदस्य होंगे वो दलित समूह के होंगे, उसका निर्वाचन कैसे होगा, ये कौन सा एरिया होगा, उसका निर्णय परिसीमन आयोग करता है और इस परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, तो जो परिसीमन आयोग है ये हमारा जो चुनाव आयोग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो चुनाव कराता है, उसके संग मिलकर डिसाइड करता है कि कौन से पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा बनाई जाए। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। तो जो ये परिसीमन आयोग है ये देखता है कि कहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ कितनी है, उसकी संरचना देखते हैं, और जहां उनकी संख्या ज्यादा होती है उनके लिए उसको आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। मैं किताब से ही आपको आगे पढ़कर बता रही हूं। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, जहां उनकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में भी फैला देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है, है ना। वो राज्य कुछ एरिया से चुनता है, बट उस एरिया में भी सीटें वो चेंज करता है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। ठीक है, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। और इधर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की भी जोरदार मांग उठी। जी हाँ, अभी तो हमने अनुसूचित जाति जनजाति की बात की कि उनको आरक्षण दिया जाता है, परिसीमन आयोग होता है, वो सीमा तय करता है कहाँ से कौन सी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारत में एक दबला कुचला वर्ग महिलाओं का भी है ना, तो फिलहाल इन महिलाओं को कोई आरक्षण फिलहाल प्राप्त नहीं है। और देख ही रहे होंगे अभी आप, बड़ी मुश्किल से 10-20-30 महिलाएं चुनकर आती हैं, तो कहा जा रहा है कि उनके लिए भी कम से कम एक तिहाई सीट आरक्षित हो, पर नहीं है अभी। लेकिन जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकार मतलब गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपल, है ना, नगर निगम आप पढ़ते हैं ना, नगर निगम की जो सरकारें बनती है, जो स्थानीय सरकारें होती है, लोकल सरकारें होती है, वहां पर इन महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। तो क्योंकि वो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में इनको संविधान में अगर इनको आरक्षण देना है तो पूरा एक संशोधन करना पड़ेगा, और इनके लिए संशोधन तो लाया गया लेकिन राजनीतिक दलों के आपसी कुछ भेदभाव रहे हैं, तो इसीलिए महिलाओं को इनमें आरक्षण नहीं मिला। परंतु कहाँ आरक्षण मिला है, लोकल बॉडीज में, स्थानीय सरकारों में। तो पंचायत में आप देखते होंगे ना, न्यूज में भी देखेंगे, देखिए अब प्रधानमंत्री अभी पंचायत के सदस्यों से बात कर रहे थे कोरोना महामारी के समय, उनको समझाने के लिए कोई वार्तालाप हो रहा था, तो उसमें काफी महिला सरपंच बैठी थी, बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर। तो वैसे ही जो स्थानीय सरकारें वहां पे महिलाओं का आरक्षण है, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में उनका आरक्षण नहीं है। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सबसे मुख्य इसमें जो टॉपिक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए चुनाव सभी कराते हैं, हर ही देश में चुनाव होते हैं, परंतु अगर स्वतंत्र नहीं है और निष्पक्ष नहीं है, तब एक व्यक्ति जब वोट करे वो बिना डर के वोट करे और कोई धांधली ना हो, तब तक चुनाव की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सफल बने तो चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। ये बनाने के लिए क्या जरूरी है, इसको हमें समझने के लिए जानना पड़ेगा कि क्या प्रणाली भारत में अपनाई गई है। तो अब हम पृष्ठ 66 पर आएंगे। पृष्ठ 66 पे आप नीचे के पैराग्राफ को देखेंगे जहां दिया हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना। अब पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या प्रणाली है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो देखिए ये चुनाव जो भी होता है, चुनाव का तरीका होता है, उसको निर्धारित करने के लिए संविधान चुनाव के बारे में दो बातें कहता है। एक तो मतदाता कौन है, ये शुरू में हमने पढ़ा था ना कि पांच बातें आज हम सीखेंगे। पहली, मतदाता कौन है, कौन मतदान करेगा और चुनाव कौन लड़ेगा। अब ये भी तो जरूरी है, हमने कहा चुनाव हो रहे हैं तो कौन लड़ेगा भाई चुनाव, और उन चुनाव जो लड़ रहा है उसको वोट कौन करेगा। तो ये बड़ा ही डिस्कशन का पॉइंट है। तो अब जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पे चुनाव में सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है और होना भी चाहिए। वयस्क अधिकार मतलब जो भी नागरिक हैं वयस्क हैं, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। मतलब जहां पर जिस देश में सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल जाए वहां कहते हैं वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौम है मतलब सब सबको सब इन्वॉल्व है इसमें। पर कई देश ऐसे हैं जहां पर ये था नहीं, यहाँ पे लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। और कुछ देश ऐसे भी थे जहां पे महिलाओं को, अमेरिका तक ऐसा देश था जहां पे बड़ी संघर्ष के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। परंतु बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया। भारत ऐसा देश है जब तक हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, महिला हो पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो, अगर वह वयस्क है तो वो वोट दे सकता है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया कि आप महिला हैं या आप धर्म की हैं, आप जाति के, नहीं, आप वयस्क हैं। वयस्क आप समझते हैं उम्र होती है ना, एक एज ग्रुप माना जाता है कि आप इस एज में आ गए अब आप वोट दे सकते हैं। तो 1989 से पहले तक भारत में कहा जाता था कि वयस्क कौन है जो 21 साल का है, 21 साल से कम वाले वयस्क नहीं है, 21 साल से ऊपर वाले ही वयस्क इसको वोट कर सकते हैं। परंतु 1989 में संविधान में एक चेंज किया गया, संशोधन किया गया और जो वयस्क है उसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई। अब आप सभी लोग मेरे ख्याल से 11वीं कक्षा में आ गए हैं तो एक या दो साल में आप सभी वयस्क हो जाएंगे और आप सबको भी वोट करने का, जिस दिन आप 18 साल के होंगे आप उसके बाद जहां भी आपके राज्य में चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे मुझे आशा है, तब तक तो आप सभी वयस्क बन चुके होंगे, तो सबको वोट करने का अधिकार मिलेगा। यानी 1989 से पहले 21 वर्ष उम्र थी वयस्क की, लेकिन अब वयस्क कौन है 18 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। जी हाँ, समानता है, सब बराबर है। ये नहीं कह रहा है कि आप वोट नहीं कर सकते, आप तो इस धर्म के हो, आप महिलाओं, नहीं, आप सब समान हो और कोई भेदभाव नहीं है। बस आप 18 साल के हुए, आप में इतनी समझ आ गई कि आप चुनाव को चुन सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो आप एक वोट प्रणाली में भाग ले सकते हैं। तो अन्य लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि देखिए पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्या समझोगी, पर ऐसा नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनका मानना था सभी नागरिक इतनी समझ रखते हैं और वो सभी को उनमें मानसिक योग्यता इतनी है और सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं, है ना। तो सरकार ने कहा, संविधान ने कहा कि हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही बात किसके लिए सच है, चुनाव लड़ने के लिए। तो भारत में सभी नागरिक चुनाव में खड़े हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी आयु जरूर फिक्स है कि जैसे लोकसभा है वहां पे कम से कम उम्मीदवार को 25 वर्ष का होना चाहिए, है ना। और कुछ थोड़े से होता है कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब आदमी नहीं होना चाहिए, उसको कभी जेल, मतलब उस पर मुकदमा तो चलता है लेकिन ये नहीं कि उसको किसी का आरोप उस पर सिद्ध हो जाए। ऐसे कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों की जेल हुई हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। तो चुनाव सब लड़ सकते हैं लेकिन आपको जेल नहीं हुई होनी चाहिए 2 साल से ज्यादा। आपकी एक उम्र तय होती है कि आप इस उम्र तक अगर लोकसभा है तो आप कम से कम 25 साल के हों, जो पंचायत है उसमें 21 साल की उम्र तक के भी लोग वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, है ना। तो जो हमारी चुनाव व्यवस्था है वो सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है, सभी को मिला हुआ है राइट कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको भी क्लियर हुआ कि आज हमने क्या समझा है। तो क्योंकि अब हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या समझा, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस थी आज जो हमने समझा। और कल से हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन सा निर्वाचन आयोग है, कैसे उसका चुनाव होता है। अब हमने जो आज पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा राज्यसभा के बारे में, है ना। हमने पढ़ा कि राज्यसभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाता है। ये प्रणाली अपनाई तो जाती है लेकिन ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक कोटा होता है, उस कोटे में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और यही कारण था, इसकी जटिलता ही एक कारण थी कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई, सार्वजनिक वोट से जो बहुमत जिसको प्राप्त होगा, जो व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो जीत कर आगे जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। दूसरा, भारत में ये जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है उसको दूसरा अपनाने का कारण ये था कि मतदाता को पता हो कि उसका जो प्रतिनिधि है वो कौन है, तो वो अपने प्रतिनिधि के पास जा सकता है, उनकी आपसी समस्या कार्य हो सकते हैं। और तीसरी बात थी कि ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें स्थायित्व नहीं आता, है ना। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो आपसी नोकझोंक चलती है, सरकार में स्थायित्व नहीं आता, सरकार डिसीजन नहीं ले पाती है, और सामाजिक वर्गों में भी अगर मतलब भेदभाव भी हो सकता है क्योंकि सभी का वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ये बात हमने आज सीखी कि क्या कारण था कि हमने सार्वजनिक वोटों की प्रणाली को अपनाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण किया गया है, ये जो कुछ जातियां हैं उनको आरक्षण दिया गया है कुछ सीटों पर, और ये आरक्षण कौन देता है, कौन सी सीट से निर्वाचित होंगे, ये परिसीमन आयोग करता है। ठीक है, जो परिसीमन आयोग है उसको राष्ट्रपति होते हैं, वो उसका गठन करते हैं, और ये चुनाव आयोग के संग मिलकर निर्वाचित करता है कि कौन सी सीटों में आरक्षण है। तो लोकसभा, राज्यसभा में जाति, अनुसूचित जाति, इनका एक आरक्षण है, परंतु महिलाओं का आरक्षण अभी नहीं है। जो महिला वर्ग है उनको लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिला हुआ है, लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं, जो हम शहरी निकायों की बात करते हैं और हम बात करते हैं पंचायतों की, वहां पे महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्राप्त है। अब हमने जान तो लिया कि कौन है ये लोग जिनको वोट हम करते हैं, पर साथ में भी जानना है कि मत कौन दे सकता है। तो भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मत अधिकार की प्रणाली अपनाई गई, जहां पर जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, वो जिस दिन 18 साल का हुआ उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 1979 से पहले सिर्फ 21 वर्ष की आयु तक के लोगों को वयस्क माना जाता था, उससे छोटों को वयस्क नहीं माना जाता था, लेकिन अब 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। वैसे ही चुनाव भी कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, पर कुछ थोड़े से उसमें प्रतिबंध है। एक एज ग्रुप कहा जाता है कि इतनी एज तक का व्यक्ति होना चाहिए, उसको जेल नहीं होनी चाहिए, ये कुछ तरीके के छोटे मोटे उसने अपराध ना किए हो, एक अच्छा व्यक्ति चुनकर जाए, वो हमारे एक लोकतंत्र की भी कामयाबी होगी। तो आज हमने रिवाइज किया है, कल से हम जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में जानेंगे और चुनाव में और क्या प्रक्रिया में हमें बदलाव करना है उसको जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।